हरी हरी हरे कृष्णा। हरी हरे कृष्णा। ठीक स्टॉप। ये दवा की महक कौन से आपने लगाया क्या? आपने? अच्छा, आपको चोट लगी। ठीक। ओम ज्ञान तिम्रांदस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्टार्ट। हम लोग आज पढ़ रहे हैं भगवद गीता से श्लोक क्रमांक 36 के आगे। इसका थोड़ा सा बेस कम कर दीजिए अगर हो सके तो। अवाच्य वादांश्च बहून वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दनस्तव सामर्थ्यम् ततो दुखतरं नु किम्। अवाच्य मतलब जो बोला ना जाए, जाया जाए, जो बात बोलने लायक ना हो, वादांश्च उसको बोलेंगे, बहुत सारे लोग बहुत बोलेंगे। वदिष्यन्ति तव अहिता, अहिता मतलब तुम्हारे शत्रु तुम्हारा अहित चाहते हैं, अहित करना चाहते हैं, वो सब तुमको बोलेंगे यदि तुम युद्ध को छोड़ देते हो। क्या क्या बोलेंगे? निंदनस तव सामर्थ्यम ततो दुखतरम नुक्तिम किम। आपके सामर्थ्य के सामर्थ्य को, आपके पराक्रम को, अर्जुन के पराक्रम को वह निंदा करेंगे, कहेंगे ये तो कायर व्यक्ति है इसलिए वह युद्ध छोड़ दिया है और इसको इससे अधिक दुख आपके लिए नहीं होगा। मतलब मर जाओगे तो भी दुख जो है वह है, इस दुख से कम ही होगा। ये बात भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे, तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है? क्या आप लोगों को लगता है कि शब्द बहुत दुख देता है और बहुत समय तक दुख देता है? शब्द ही दुख देते हैं। मैं एक माता जी जिनके हम कार्यक्रम करने जाते हैं, बोलते हैं अब तो उनके बच्चे बच्चे की शादी हो चुकी है, बोले जब मैं शादी होके आई थी तब मैंने हलवा बनाया था और मेरी सास ने बोला अब बहुत अच्छा बना है लेकिन माल डालेंगे तो अच्छा बनेगा ही, मतलब तुम्हारी क्या उसमें योग्यता है। तो वो बात उनको कब हुई होगी? 30-35 साल पहले। कहते आज तक मुझको याद है। तो आप देख सकते हैं कि जो शब्द है वो इतना मर्म भेदी होता है कि 30-40 साल तक लोगों को याद रहते। कुछ भक्त इस कौन में नहीं है क्योंकि 30 साल पहले कुछ हुआ था 30 साल पहले किसी भक्त ने कुछ खराब बोल दिया तो उस कारण से आज तक उस कौन में वापस नहीं आए। इतना खतरनाक हो जाता शब्द, बहुत खतरनाक होता है। तो ये सहन नहीं होता। इस संबंध में भगवान कृष्ण से उद्धव जी पूछते हैं कि किस पब्लिक में कोई मूर्ख व्यक्ति अगर किसी का अपमान करते हो, कितना भी ज्ञानी हो कि वो शरीर नहीं है, फिर भी वह अपने मन को स्थिर नहीं कर सकता, तो आपके भक्त कैसे सहन कर लेते हैं? तो भगवान कहते हैं क्योंकि उनका मन मुझमें लगा है इस कारण से, अन्यथा मन तो पकड़ लेता उन बातों को, अन्यथा आप सहन नहीं कर सकते। आप देखिए कि ज्यादा इस पर हम इलैबोरेट नहीं करना चाहते, लेकिन हरिदास ठाकुर जी के संबंध में आप देख सकते हैं कि 22 बाजार में मारा गया तो क्या बेइज्जती नहीं है ये? है ना? आप सोचो कि किसी के संग भी पुलिस वाले 2000 थप्पड़ मार दें किसी को तो कितना खराब लगेगा। हर आदमी सोचेगा ना कि कितना गलत आदमी, कुछ गलत किया होगा, कुछ चोरी किया है तभी तो ऐसा किया है। साधु को भी कोई मारेगा तो सोचेगा अच्छा साधु की ड्रेस में है, जरूर कुछ गड़बड़ काम किया इसलिए पुलिस मार रही है, और बिना कारण के। तो 22 बाजारों में मारने के बाद भी हरिदास ठाकुर जी यही कह रहे हैं कि नहीं भगवान इनकी उनको माफ कर दीजिए, इन्हें पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। ये जीसस क्राइस्ट के केस में आप देख सकते हैं। तो ये जो सहिष्णुता है ये बड़ी टफ क्वालिटी है। तो खैर यहां पे क्षत्रिय है, क्षत्रिय तो वैसे भी सहन नहीं कर पाते, तो भगवान उस गुण को उकसा रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम्हारे इस सामर्थ्य को पराक्रम की वे निंदा करेंगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा, इससे बड़ा दुख तुम्हारे लिए नहीं है। ठीक है। इसके अलावा ये गीता भूषण टीका पढ़ रहे हैं, आपके शत्रु जो कि धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, इसके अलावा का अर्थ क्या है? तुम्हें अकीर्ति प्राप्त होगी और तुमको पाप प्राप्त होगा। ये पिछले श्लोक में बताया था, हमने चर्चा किया था। अब कह रहे हैं इसके अलावा आपके शत्रु अर्थात आपका अहित करने वाले आहिता जो कि धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, ये भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने बहुत से अहित करने का प्रयास किया था, इसलिए यहां पे उनको आहिता कहा जा रहा है। ये तो समझाने की जरूरत नहीं है क्या क्या अहित किए थे। आपके पूर्व सिद्ध पराक्रम की आलोचना करेंगे और आपको बंजर तिल के बीज, अब ये भी पता नहीं बड़ी स्पेशल प्रकार की भर्सना है, जैसे कई असहनीय शब्द कहेंगे। मतलब क्या बेकार इंसान है, तिल तिल बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी चीज होती है लेकिन बंजर तिल का बीज किसी काम का नहीं है। तो उसी संबंध में बोला जा रहा है कि ये तो बंजर तिल के बीज के समान है, से कोई फल प्राप्त नहीं होता, से कुछ काम नहीं होता, निकृष्ट है, ऐसी बातें में बोलेंगे। ये ध्यान देना चाहिए कि भीम को जब दुर्योधन और कर्ण ने द्रौपदी के प्रति अपशब्द कहे थे वो पूरा समय उनके चित्त में घूमते रहते थे और बार बार दांत जैसे कसके भीजते थे। कहते हैं जितनी बार मैं याद करता हूँ पान चाली कोई शब्द कहे मेरा खून खौल जाता है, मुझे लगता है मैं कब उनको मारूंगा, ऐसे करके मैं सो नहीं पाता हूँ। महाभारत में सबका वर्णन इस प्रकार से बहुत सारी बातें बोली थी, तुम तो दास हो, तुम लोग तो दास हो गए, तुम लोग क्या करोगे, ऐसे बहुत बुरी बातें बोली थी। तो बातें उनके दिन में घूम रही थी। क्या बोला था सुना नहीं पड़ा, माइक पे बोलिए।
द्रौपदी ने जब दुर्योधन ये नहीं समझ पाया था तब लाइक फादर लाइक सन, मतलब अंधे का पुत्र,
यस अंधे का पुत्र अंधा द्रौपदी ने बोल दिया था और हंस दिया था। देखिए स्त्रियां कुछ मजाक करके किसी पुरुष का हंस दें वो और असहनीय होता है, सबके सामने ऐसा कह दिया तो उसका हक, तभी उसको जल गया और जल गया था। तो खैर ये आप देख सकते हैं, बस खाली हम लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं कि शब्द ही बहुत मर्म भेदी होते हैं, केवल बाण ही नहीं। जैसे हमारे प्रभु जी के पांव में चोट लगी है तो आप देख रहे हैं दर्द कम होता जाता है, अगर कोई गाली दे देगा तो वो दर्द बढ़ता चला जाता है ना, अरे इसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों कहा, उसकी चर्चा करेंगे तो और बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार हाँ बहुत कष्ट होता है, व्यक्ति को दर्द होता है, ठीक है। तो इसी बात को हम लोग थोड़ा सा इलैबोरेट कर रहे हैं कि किस प्रकार से दुखतर होगा, बहुत अधिक दुख होगा इस प्रकार से ऐसे शब्द सुन करके। और इस तरह के ना कहे जाने लायक शब्दों को सुनने से आपको कितना अतिशय दुख होगा। इस प्रकार इन 6 श्लोकों से पता चला कि युद्ध से बचने से अपकीर्ति और स्वर्ग की हानि ही होगी। समझ में आ गया, 6 श्लोक का मतलब हो गया 36वां 36 35 34 33 32 31। यहां पे भगवान ने वर्णन किया कि तुम आत्मज्ञान के अर्थात पे उन्होंने कहा कि शोक मत करो। अब यहां पे सकाम कर्म के एनालिसिस के अनुसार कि इस जगत में भी तुमको दुख प्राप्त होगा यह समझते हुए तुम स्वर युद्ध करो, ठीक है। तात्पर्य प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण को अर्जुन के अयाचित दया भाव पर आश्चर्य हुआ था। अयाचित दया भाव मतलब, अयाचित मतलब होता है जो बिना मांगे, हाँ अपने वो कहते थे क्या श्लोक था वो, कुतस्तवाह कश्मलमिदम विषमे समुपस्थितम, कहां से ये तुम्हारे अंदर ये हीनता आ गई कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, कहां से मांग के ले आए। यस यस, और उन्होंने इस दया भाव को अनार्योचित बताया था, एक आर्य अनार्योचित जो एक अनार्य के लिए उचित है, यानी आर्य के लिए अनुचित और अनार्य के लिए उचित है ऐसा बताया था, ठीक है। अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन के तथा कथित दया भाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को सिद्ध कर दिया है। तो अब समझ गए होंगे, सिद्ध कर दिया है किस भावना से, सकाम कर्म को स्थापित करके कि तुमको स्वर्ग, अगर मरे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी और अगर जीते तो यहां विजय प्राप्त होगी, तो हर तरह से तुम्हारे लिए युद्ध करना ही श्रेयस्कर है। मैं नहीं समझता इसमें कुछ समझाना है, स्पष्ट है। 37 हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अर्थ स्पष्ट है, हता मतलब मारे जाओगे तो क्या प्राप्त होगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जीतवा वा मोक्ष से महिम, महिम मतलब धरती, तो अगर आप जीतोगे तो धरती का भोग करेंगे, इसलिए सो जाओ चारपाई डाल के, है ना? नहीं, तस्माद उत्तिष्ठ, इसलिए उठो क्योंकि दोनों हाथ घी में और सर कढ़ाई में, हर तरह से आपका फायदा है। सुना है ना आपने इस तरह से? कौंतीय का अर्थ है कुंती पुत्र, और युद्ध करो कृत निश्चय, निश्चय करके। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। गीता भूषण टीका, मैं लड़ाई छोड़ रहा हूं क्योंकि यह अनिश्चित है कि मैं विजयी रहूंगा। ये डाउट है कि जरूरी तो नहीं कि मैं युद्ध करूंगा, तो इस पे भगवान बोल रहे हैं कि अगर आप यहां तक कि पराजित होने और मारे जाने के बाद भी आप स्वर्ग को प्राप्त करेंगे, विजय होने पर आप पृथ्वी का आनंद लेंगे। एक पॉसिबिलिटी ये भी तो है कि पराजित भी हो जाए और जिंदा भी रह जाए, इसका खंडन कीजिए। यह है एक एक पोजीशन, ये है कि मारे गए स्वर्ग प्राप्ति होगी और तुरंत होगी, यज्ञ करने से बाद में होती, लेकिन मरेंगे तो तुरंत स्वर्ग की प्राप्ति होगी तो फायदा है, जीत गए तो विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर पराजित हो गए और जिंदा बच गए तो क्या उत्तर है? उत्तर दीजिए माइक पे। क्या ये भी पॉसिबिलिटी है कि पराजित हो जाएं और जिंदा बच जाएं? मुझे पता है इसमें बहुत लोग गलती करेंगे, इसलिए बताइए क्या ये संभावना है कि अर्जुन पराजित हो जाएं और जिंदा भी बच जाएं? अब तो बहुत आसान कर दिया मैंने। बोलिए बोलिए बोलिए, माइक दीजिए माइक दीजिए।
जैसे अर्जुन जैसा क्षत्रिय योद्धा पराजित अगर हो जाए तो वो जिंदा नहीं रह सकता, वो मर ही जाएगा।
वो तब तक जब तक मारे नहीं जाएंगे वो लड़ते रहेंगे, ये हिसाब किताब। ऐसा नहीं अभिमन्यु क्षमा मांगना चालू कर दिए थे, मर गए लेकिन वह पीछे नहीं हटे। आप देखिए, बोलता हूँ तो रोमांचित हो जाता हूँ सुनकर, कैसे भाव से युद्ध कर रहे थे। मैंने सुना इतने 16 ना कितने महारथियों से अकेले से युद्ध कर रहे थे। ऐसा नहीं थे सरेंडर करते, चलिए मैं आपके पक्ष में आ जाता हूँ, छोड़ दीजिए अभी थोड़ी देर के लिए, जब तक अर्जुन वापस आए तब तक जो है हम मांडवली कर ले, मांडवली का मतलब होता है समझौता कर ले, फिर आज जब शाम हो जाएगी तो उधर वापस पांडव के पास चले जाएंगे। नहीं, जैसे आप जानते हो भगवान कृष्ण की लीला में भी प्रद्युम्न युद्ध कर रहे थे सल्व से, और सल्व ने अचानक से, सल्व का जो कमांडर था अचानक से आकर के उनके छाती पर वो गदा मार देता है तो बेहोश हो जाते हैं, तो उनका जो रथी है वह उनको युद्ध से थोड़ा दूर ले जाता है, फिर पानी वानी छिड़कता है, फिर वह होश में आते हैं। तो उन्हें बड़ा क्रोध आता है, कहते हैं अरे तुम ऐसा कैसे कर दिए, मैं मर जाता तो बढ़िया रहता, अब अगर मैं वापस जाऊंगा तो ये जो मेरी अन्य मतलब जैसे भाइयों की पत्नियां हैं मुझ पे थूकेंगी या मुझ पे मेरा उपहास करेंगी। तो कहते हैं नहीं, मैंने आपकी रक्षा करने के लिए किया। फिर वो प्रद्युम्न को लेके आते हैं, फिर उनको मार देते हैं, प्रद्युम्न जो है उनको मार देते हैं। इसका नाम याद नहीं आ रहा, कुष्मांड नाम था, ऐसा कुछ नाम था जहां तक मुझे याद आ रहा है। यानी हाँ, तो इस प्रकार से ऐसा होता, तो ये क्षत्रियों के लिए मरना ही श्रेयस्कर होता, तो मर जाते लेकिन वह जब तक वो मरते नहीं तब तक वो जीतना संभव नहीं था, तो इसलिए ये थर्ड ऑप्शन नहीं था कि पराजित हो जाते और जिंदा रहते। यस,
इवन अभिमन्यु भी, उसको पता नहीं था कि चक्रव्यूह उसको तोड़ना नहीं आता था, फिर भी वो युद्ध में बहुत वीरता से लड़ रहे हैं। और
हाँ, तो यही मैं बोल रहा हूँ कि क्षत्रियों में भावना ही रहती, इतना आसान भी नहीं क्षत्रिय होना, एक्चुअल क्षत्रिय होना बहुत मुश्किल है। सब ऐसे ही है, सब तो ठीक है। अरे हम भी ऐसे, हमसे कोई बोल दे कि गन चलाओ तो ना, हम तो चले गए गन, लेकिन ठीक है, कलयुग शुद्ध संभव है। यहां तक कि पराजित होने और मारे जाने के बाद भी आप स्वर्ग को प्राप्त करेंगे, विजय होने पर आप पृथ्वी का आनंद लेंगे, दोनों परिस्थितियों में आपको लाभ होता है, तो इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं कि क्या फायदा, फायदा ही फायदा ही फायदा है। यद्यपि अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित न थी, फिर भी उसे युद्ध करना था, क्योंकि यदि वह युद्ध में मारा भी गया तो वह स्वर्ग लोक को जाएगा। तो स्पष्ट है, वही बात बोल रहा है प्रभुपाद जी। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है 38, बहुत इंटरेस्टिंग है। यहां भगवान थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं और क्या बता रहे हैं, यहां सकाम कर्म से अब वह निष्काम कर्म की तरफ ट्रांजिशन कर रहे हैं। अभी तक भगवान सकाम कर्म का लाभ दिखा करके कि देखो तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा इसलिए कर्म करो, या तुम इस जगत को भोगोगे ये कर्म करो इसलिए करो, अब कह रहे हैं देखिए, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभ लाभौ जया जयौ, ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। तब यहां पे कह रहे हैं निष्काम भावना से सुख दुख में सम रहते हुए, लाभ और लाभ में जय पराजय में सम रहते हुए तुम युद्ध करो, और ऐसा युद्ध करोगे तो तुम्हें कभी भी पाप नहीं लगेगा। इसको हम थोड़ा सा जब हम चर्चा करेंगे टीका में तो हम समझाने का प्रयास करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। युद्ध के लिए युद्ध करो अर्थात मेरा कर्तव्य है। आप कुर्सी पे बैठ सकते हो, प्रॉब्लम नहीं, उधर तो ठीक है। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, बंधन नहीं लगेगा। पाप का अर्थ यहां पे कर्म बंधन नहीं लगेगा। देखिए अब थोड़ा धीरे धीरे समझिए। गीता भूषण टीका, आपने श्लोक 33 और इसके बाद के श्लोकों द्वारा समझाया है कि मैं युद्ध न करके पाप को प्राप्त करूंगा क्योंकि मैं अपना कर्तव्य छोड़ दूंगा। ये बात समझ में आया था। अकीर्तिम चामि भूतानि, है ना, आपकी अकीर्ति भी होगी और आपको अपने कर्तव्य का, धर्मम संग्रामम, आप अगर संग्राम को, इस धर्म रूपी युद्ध को नहीं करोगे, हित्वा पापम वापसी, आप इसको छोड़ोगे तो आपको पाप लगेगा। लेकिन फिर भी मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए क्योंकि राज्य प्राप्त करने के लिए युद्ध में ब्राह्मणों और गुरुओं को मारने से पाप होगा। क्या, किस करने से पाप होगा? राज्य प्राप्त करने से, सकाम इच्छा से करूंगा तो पाप लगेगा। तो अब भगवान बोल रहे हैं नहीं, तुम जीतने के लिए युद्ध मत करो। बहुत ही सूक्ष्म पॉइंट है। युद्ध क्यों जीतना चाहते हैं? ताकि विजय प्राप्त करें। तुम इसके लिए युद्ध नहीं करो। युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, इसलिए युद्ध करो। और इस कर्तव्य के पालन से, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, इस कर्तव्य के पालन से तुम आत्मज्ञान की तरफ उन्नति करोगे। ये थोड़ा सा टफ है। देखिए इसको आगे भी हमने चर्चा किया था। भगवान ने वर्णाश्रम सिस्टम बना रखा है। वर्णाश्रम को जब निष्काम भावना से किया जाता है तो यह आत्मज्ञान देता है, आत्मा की अनुभूति देता है। जैसे हम बार बार चर्चा सुनते हैं कि हम आत्मा हैं, लेकिन अनुभूति नहीं होती, तो क्यों नहीं होती है? हृदय शुद्ध है। तो हृदय को शुद्ध करने के लिए ये निष्काम कर्म बोला जाता है, जिसमें व्यक्ति चाहे क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य शूद्र हो, वह भोग प्राप्ति के लिए उन कर्मों को नहीं करता। आत्मज्ञान की प्राप्ति या भगवान की प्राप्ति के लिए वह इन कर्मों को करता है, वह कर्मों को कृष्ण को समर्पित करता है। ये बातें समझ में आ रही हैं? जैसे कीचड़ से कमल उगता है, तो कीचड़ गंदा है तो कमल फिर भी उससे उगता है। उसी प्रकार से भले ही कर्म बाह्य रूप से आपको लगे कि बंधन में करने वाले हैं, लेकिन जब कर्मयोग किया जाता है, भगवान को समर्पित करते हैं, तो उसी से आत्मज्ञान रूपी कमल प्रकट होता है। आप कहेंगे कैसे होता है, उसके बारे में बताया जाएगा। ऐसा नहीं है, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, जब आप मुक्ति की इच्छा से लड़ रहे हो तो आप उन्हें मारकर भी पाप नहीं करेंगे। आप केवल युद्ध कर रहे हैं क्योंकि भगवान की व्यवस्था से युद्ध आपके सामने उपस्थित हुआ है, आपका कर्तव्य है, आप इसलिए युद्ध कर रहे हो। स्वर्ग प्राप्ति के लिए भी युद्ध नहीं कर रहे हैं। प्लीज आप ध्यान दीजिएगा, इन श्लोकों की जो पहले हमने 31 से 36 तक चर्चा किया था, उससे ये थोड़ा भिन्न श्लोक चल रहा है। क्या आप लोग समझ पा रहे हो इस बात को? भगवान बोल रहे थे कि आप सुधर्म का पालन इसलिए करो क्योंकि इसको करने से आपको स्वर्ग भी मिलेगा, अगर जीते तो यहां का फायदा मिलेगा। ये क्या है? भौतिक इच्छा से प्रेरित होकर के स्वकर्म करना। अब भगवान ने बता रहे, नहीं, सम रहते हुए तुम्हें लाभ मिले या ना मिले, क्योंकि तुम्हारा युद्ध करना कर्तव्य है, इसलिए युद्ध करो। ये निष्काम कर्म है। और उसका मतलब इसमें कामना क्या है? मेरा हृदय शुद्ध हो जाए। जैसे अब आप समझ जाओगे आसानी से, हरे कृष्ण मंत्र आप इसलिए भी कर सकते हैं कि नौकरी मिले, स्त्री मिले, धन मिले, यश मिले। यस, कर सकते हैं, तो करते भी हैं। लेकिन अगर हम भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं तो हम, ये बोला जाता है ना शास्त्र में कि निष्काम भाव से करो। टफ हो रहा है या समझ में आ रहा है? जब हम शास्त्र सुनते हैं कि भाई इन भौतिक चीजों से हम सुखी नहीं हो सकते, तो बुद्धि का उपयोग करके व्यक्ति निष्काम भावना से भगवान की भक्ति करता है भगवत प्रीति प्राप्त करने के लिए। निष्काम का मतलब ये नहीं कि कोई कामना नहीं, भौतिक कामना नहीं, मेक सेंस। उसी प्रकार से अगर कोई भक्ति नहीं कर पा रहा है सीधे, तो स्वधर्म का पालन जब वो निष्काम भावना से करता है तो यह भी एक साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति आत्मोन्नति प्राप्त करता है। और इसी चीज को आगे 18वें अध्याय में बताया गया था, ऐसे करते करते व्यक्ति ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त होता है। और जनक आदि ऋषि जो राजा हैं उनको भी इस प्रकार से सिद्धि प्राप्त हुई है। ऑल द ये स्लो प्रोसेस है, लेकिन यह भी एक प्रोसेस है। अब आप कहेंगे तो भगवान सीधे भक्ति के बारे में क्यों नहीं बता रहे? आप देख सकते हो कि भक्ति का अधिकार सबका शुरुआत में नहीं होता है। अर्जुन को एग्जाम्पल, अर्जुन तो भक्त हैं, अर्जुन पे अप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन अर्जुन को अगर एक सामान्य क्षत्रिय की तरह देखें तो उनके लिए तुरंत केवल भक्ति को स्वीकार करना संभव नहीं है। तो ये भगवान की कृपा है कि व्यक्ति मानव जीवन प्राप्त करके व्यर्थ ना जाए, वे कम से कम उस पथ पे आगे बढ़े। फास्ट ट्रैक नहीं जा सके तो कम से कम एकदम गलत दिशा में ना जाए, वर्णाश्रम का पालन करे और धीरे धीरे वे आगे प्रगति करे। मुझे लगता है कि समझ में आ रहा होगा, ये ट्रांजिशन समझ में आ रहा है। भगवान अब यहां से अब निष्काम कर्म के बारे में बोल रहे हैं। फिर ध्यान दीजिए, भगवान ने आत्मज्ञान दिया, जब देख रहे हैं, याद आया था अर्जुन टीका में आचार्य अर्जुन के द्वारा प्रश्न उठाते हैं, मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है? तो कह रहे, चलो समझ में नहीं आ रहा है कोई बात, तुम स्वधर्म का पालन बहुत ही अच्छा से करो। अब भगवान यहां थोड़ा चेंज कर रहे हैं, स्वधर्म को स्थापित करके अब यहां स्थापित कर रहे हैं कि एक्चुअली तुम्हें निष्काम भाव से करना चाहिए ताकि तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो। क्या बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है? या यस, आप किसी जॉब प्राप्त करने के लिए करिए, कुछ करिए, माइक पे बोल सकते हैं।
शुरुआत में जब हम कोई नया व्यक्ति आता है तो हम उसको कहते हैं कि आपको जॉब नहीं मिल रही, तो हरिकृष्णा मंत्र से जपने से आपको जॉब मिल जाएगी,
जॉब मिल जाएगा, वैसे मिल ही जाएगा। यही तो प्रार्थना है, कृष्ण हमें अपनी सेवा में नियोजित कीजिए।
लेकिन बाद में फिर हम उसको कहते हैं कि आप जो है निष्काम भाव से भगवान की प्रीति के लिए कीजिए।
प्रोसेस ही है, जब वह शुद्ध हो जाता है, आप उसको प्राय बोलते भी हो शुरुआत में कि आपका मन शांत होगा, आपको अच्छा लगेगा, और फिर धीरे धीरे करके बहुत सारी बुरी आदतें छूट जाएंगी। फिर धीरे धीरे करके जब कुछ समय बाद हृदय शुद्ध हो जाता है, फिर आप उसको उच्चतर ज्ञान दे सकते हैं। आप स्वयं भी देखेंगे कि शास्त्र की बहुत सारी बातें जिनसे आप रिलेट नहीं कर पाते थे, संबंध स्थापित नहीं कर पाते थे, समझ नहीं पाते थे, इससे हमारा क्या फायदा होगा, वे हरिनाम करने से जब आप पढ़ते हो तब समझता रही, तो बहुत फायदे की बात है। अगर जो लोग भक्ति कर रहे हैं इस बात को समझ सकते, वही शास्त्र वही गीता का वचन आपको लेकर, ये तो बहुत फायदे की बात है, पहले आप उसको रजिस्टर ही नहीं कर पाते। तो ये जो है अधिकार, जैसे जैसे व्यक्ति का बढ़ता है उसके अनुसार ज्ञान दिया जाता है, तो भगवान की ये कृपा है। ठीक है, तो अगर निष्काम भावना से मुक्ति की इच्छा से आप युद्ध कर रहे हो कि मैं इससे शुद्ध हूं, तो फिर आपको पाप नहीं लगेगा। सकाम कर्म से निष्काम कर्म की ओर यहां इस श्लोक से परिवर्तन हो रहा है, और जिसका उद्देश्य आत्मज्ञान या मुक्ति होता है, इसी की मैं चर्चा कर रहा था। ऐसा इस श्लोक में वर्णन किया गया है, मतलब क्या वर्णन किया गया, निष्काम कर्म समान अर्थात सम होने का अर्थ है इस जगत में सभी परिस्थितियों में अपरिवर्तित रहना। जब बोला जा रहा है सभी परिस्थिति, इसका अर्थ क्या है, परिस्थितियां परिवर्तित होंगी। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमेशा हम लोग को जय ही प्राप्त होगी, नहीं होगी, केवल भगवान कृष्ण हैं या विष्णु ही हैं जिनकी हर समय जय होती है, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। जैसे क्या को बोलते हैं कि शेर को सवा शेर, यस, आप इस जगत में कितने भी बड़े हीरो हो जाइए, एक हीरो आपसे श्रेष्ठ होगा। जैसे रावण को देख सकते हैं, रावण इतने बड़े हीरो थे, लेकिन कार्तिक वीर अर्जुन उनको क्या, बाली सॉरी, उनको कांख के नीचे हाथ में ऐसे फंसा करके घूमते रहे बहुत दिन तक, और कार्तिक वीर अर्जुन ने भी उनके हमको हरा दिया था, बंदी बना लिया था। तो आप देख सकते हैं कि कितना भी बड़ा हीरो हो, उसको फिर ठंडा करने के लिए कोई दूसरा हीरो हमेशा रहता है ना। बाणासुर तो था, बाणासुर को तो फिर जो है भगवान ने आके ठंडा कर दिया। तो ये चीज रहती है, हर व्यक्ति को कभी ना कभी पराजय स्वीकार करनी पड़ती है। और भाइयों, इंद्रियों से पराजय तो हमें दिन में एक बार तो हो ही जाती है, आत्मज्ञान देने के बाद जब सामने पास्ता आता है तो उस समय भूल जाते हैं। तो हम जो है फिर सारा ज्ञान भूल जाते, ये इंद्रियों की हार ही है। तो इंद्रियों से तो व्यक्ति हारता ही है, बाकी चीज से हारे या ना हारे। तो खैर, बात यह है कि अच्छा, दूसरा बात आप देख सकते हो, कभी कभी आपको ये सब प्रैक्टिकल भी है, हमारी भक्ति में भी, हम भक्ति कर रहे हैं, कभी हमको भक्ति बड़ी अच्छी लगती, बड़ा हमें लगता है कि हम जप कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत हम स्ट्रांग फील करते हैं, कभी एकदम से डाउन फील करते हैं। दोनों ही परिस्थिति में सम रहने का प्रयास करना चाहिए, बहुत हर्षित नहीं हो जाना चाहिए। या मान लीजिए आप, हम कोई प्रचार कर रहे हैं या कुछ भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो बढ़िया फल फूल रहा है, तो एकदम हर्षित हो गए, सोचते बहुत हीरो है, और उसके बाद एकदम से कम हो गया तो अरे अब कुछ नहीं रहा। ऐसा नहीं करना चाहिए। फल देने वाले कौन है? भगवान। ये बहुत अच्छी बात है। फल की शक्ति नहीं है हमारे अंदर, शक्ति नहीं है कि हम फल का निर्माण कर सकें, चिंता नहीं करना चाहिए उसके बारे में। ये आगे ये बातें भगवत गीता में बार बार आएंगी। समत्वम योग उच्चति, योग का मतलब ही है सम रहना। इतने सारे फैक्टर हैं कि सारे फैक्टर मिलाकर के कार्य होता है, आप अकेले करने वाले नहीं हो। ठीक है। सुख और उसके कारण लाभ जो कि युद्ध विजय है, उसके प्रति राग को त्यागते हुए। ये लाइन समझ में आ रही है? थोड़ा स्टाइल है इनका कहने का। सुख का कारण क्या होता है? जब हमें कुछ लाभ प्राप्त होता है, और वो लाभ यहां पे क्या है? विजय। तो स्वाभाविक है कि किसी क्षत्रिय की एक युद्ध को में विजय प्राप्त करने के प्रति आसक्ति अवश्यम भावी है, उसको त्याग दो। मेक सेंस? समझ में आ रहा है? मुझे लाभ होगा, मेरी विजय प्राप्त होगी, उस आसक्ति को तुम त्याग दो। फिर और दुख जो अलाभ से प्राप्त होता है, जिसका कारण पराजय है, उसके प्रति द्वेष को त्यागते हुए और इस प्रकार निर्विकार चित्त से युद्ध करो। मतलब अरे मैं हार जाऊंगा तो क्या होगा, ये कोई निश्चित तो है नहीं कि मैं हार जाऊंगा, जीतूंगा ही, हार गया तो क्या होगा, अरे युद्ध मुझे करना ही नहीं है। जैसे इंद्र और वृत्तासुर के बीच में युद्ध हो रहा था, तो इंद्र गदा चलाते हैं और वो गदा निष्फल हो जाती है, तब उनको वज्र चलाने में भी डर लगता है। और जहां तक मुझे, हाँ सही बोल रहा हूं, इंद्र की वो गदा पकड़ करके चलाते हैं और एरावत पे मारते हैं, तो अब जो है हाँ एरावत सहित 18 हाथ पीछे जाते हैं, तो उनको डर लग रहा है कि वज्र चला दिया और वज्र पकड़ के मेरे पे वज्र मार दिया तो मेरी हालत क्या होगी, तो उनको डर लग रहा है, अलाभ से पराजय से डर लग रहा है, इसलिए इंद्र नहीं चला रहे उसको। फिर बतासुर कहते हैं देखिए मेरा हाथ कट गया है, आगे जा करके वो चलाते हैं, इंद्र चलाते भी हैं वज्र, फिर उनके दोनों हाथ कट जाते हैं, ऐसा कुछ होता है, एक हाथ कट जाता है, ऐसा मैं थोड़ा भूल रहा हूं। फिर कहते मेरा एक हाथ कट गया है, फिर भी मैं युद्ध से हार नहीं रहा हूं, आप क्यों ऐसा घबरा रहे हैं, ऐसा करके उपदेश देते हैं। तो कहते हैं कि मुझे पता है कि मैं आपके द्वारा मारा जाऊंगा। वृत्तासुर कहते हैं कि ये निश्चित है कि आपके द्वारा मारा जाऊंगा, फिर भी मैं उत्साह के संग युद्ध कर रहा हूं। कह रहा हूं कि ये भी पता था कि भगवत धाम जा रहे हैं इसलिए उत्साह था, लेकिन आइडिया इज दैट कि हमें पूरे उत्साह के संग भगवान की सेवा करना चाहिए। ठीक है, हम अपने भक्ति के कॉन्टेक्स्ट में ले रहे हैं। यहां पे वो युद्ध कीजिए, आप जीतोगे हारोगे इसके बारे में आप चिंता मत करो, ये अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। हाँ
जैसे बहुत लोग इस तरह का प्रश्न करते हैं कि जैसे अगर हम फ्यूचर के बारे में नहीं देखते हैं तो काम करने का वो इम्पेटस जो नहीं देता, वो फीलिंग नहीं आती।
मुझे लग रहा था कि ये प्रश्न आएगा कि निष्काम का मतलब है कि हम फ्यूचर के बारे में ना सोचे। गलत। यहाँ पे निष्काम का अर्थ है भौतिक कामनाओं वाले फ्यूचर को त्यागी, फ्यूचर में भौतिक भोग के प्रति आसक्ति को त्यागी। फ्यूचर के बारे में तो सोचना है आपको, मानव ही तो फ्यूचर के बारे में सोच सकता है, पशु कैसे सोचेगा? कौन सा फ्यूचर? फ्यूचर में मैं आत्मज्ञान प्राप्त करूंगा, भगवान की प्राप्ति करूंगा, इसलिए भौतिक लालसाओं को त्याग रहा हूं। बहुत सूक्ष्म पॉइंट है, मुझे लग रहा था ये प्रश्न आएगा। ऐसा नहीं कि हम फ्यूचर के बारे में सोच नहीं रहे हैं। कौन से फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं? भगवत प्राप्ति करनी है, इसलिए इन भौतिक इच्छाओं के लिए नहीं लालायित हूं। सिंपल सी बात है। क्या आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं? माइक लीजिए, बताओ, बोलो।
मैं तो नहीं सोचता।
आप नहीं सोचते तो आप आप सोचते हैं फ्यूचर के बारे में? माइक पास में बताइए, आपको आपसे प्रश्न कर रहा हूँ।
सोचता हूँ।
क्या सोचते हैं?
कि सेवा करना है
और
अच्छे से जप करने हैं महाराज।
आप प्रोसेस के बारे में बोलो। अच्छा। आप ही नहीं सोचते कि एक दिन भगवान से प्रीति होगी, भगवान का दर्शन होगा? ये तो सोचता है, हर वक्त सोचता है। स्वर्ग जाना चाहते हैं आप?
नहीं।
तो दोनों ही चीज फ्यूचर है, और दोनों ही चीज आप भक्ति से प्राप्त भी कर सकते हो। तो कौन सा फ्यूचर चाहते हो? भगवत प्राप्ति वाला फ्यूचर या स्वर्ग जाने वाला फ्यूचर? तो शास्त्र क्या बोल रहा है? स्वर्ग जाने वाला फ्यूचर को त्यागो और भगवत प्राप्ति वाले फ्यूचर पर केंद्रित करो, हायर गोल। ये नहीं बोला जा रहा कि आंखें बंद करो। समझ में नहीं आ रहा? मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल से देता हूं। नई व्यक्ति के लिए थोड़ा ये सब बात है, इस नई व्यक्ति के लिए। या बोलो कि भाई हरि नाम को बहुत ध्यान पूर्वक करना है, जिसको मैं पहली बार एक माला करा रहा हूं, उसे क्या समझाऊं? कुछ मत समझाओ, ये नए लोग हैं यहाँ पे, आपका दीक्षा हो गया ना, तो फिर नहीं, ये सब नए लोगों के लिए नहीं। जिसको वाकई समझना है, अब कोई इंटीग्रेशन की इक्वेशंस में जो है नर्सरी के बच्चों को कैसे समझाऊं, वो प्रश्न ही नहीं है उसके लिए। ये चर्चा इसलिए हो रही जो लोग थोड़ा परिपक्व रूप से गीता को समझना चाहते। उद्देश्य तो यही है कि हम भगवत प्राप्ति करने के लिए, प्रेम प्राप्ति करने के लिए, भगवत प्राप्ति करने के लिए, आत्मज्ञान प्राप्ति करने के लिए हम अपने कार्यों को करें, ठीक है। ओके, आप निर्विकार चित्त से प्रवृत्त हों, आप युद्ध में प्रवृत्त हों, क्योंकि यह आपका कर्तव्य है। एक योद्धा के रूप में आप मुक्ति की इच्छा के कारण उन्हें मारने पर भी प्राप्त पाप को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि आपका इंटरेस्ट जो था वह युद्ध में था ही नहीं। आप तो इसलिए युद्ध कर रहे थे क्योंकि आपका युद्ध करना कर्तव्य है। जैसे आप देख सकते हैं कि भीष्म भी अपने गुरुजी का नाम क्या है उनका, परशुराम से युद्ध किए थे, उनको युद्ध करने में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन अब गुरुजी चैलेंज किए हैं तो इसलिए वो युद्ध कर रहे, और कोई पाप नहीं लगा उनको, कोई नुकसान नहीं हुआ, खूब बाण चलाए गुरुजी के ऊपर, खून खून कर दिया, लेकिन कोई पाप नहीं लगा, ठीक है। जो भौतिक परिणामों की लालसा से लड़ता है वह पाप करता है, लेकिन जो सच्चा ज्ञान प्राप्त करना चाहता है वह पुरातन अर्जित अनंत पापों को नष्ट करता है। तो आप देख रहे हैं ना, सच्चा ज्ञान प्राप्त करने का उद्देश्य है भाई इस समय मेरा हृदय शुद्ध नहीं है, मान लीजिए मैं क्षत्रिय हूं तो युद्ध करना मेरा कर्तव्य है, तो अब इससे क्या होगा, मैं युद्ध करूंगा तो उससे मेरी आत्मानुति मतलब हृदय की शुद्धि होगी, फिर मैं आत्मज्ञान का अधिकारी बनूंगा, कर्मयोग करके मैं ज्ञान योग पियाऊंगा, तो फ्यूचर तो मैं देख रहा हूं अपना, लेकिन कौन सा फ्यूचर, आगे के भोग प्राप्त करने वाला फ्यूचर नहीं, शुद्ध जीवन वाला फ्यूचर। मेक सेंस टू यू, ठीक। परिणाम की इच्छा के बिना कोई व्यक्ति युद्ध, दान या अन्य कार्यों के लिए कैसे इच्छुक हो जाता है, शायद आपका प्रश्न इसी प्रकार का था, मैं बिना परिणाम के क्यों का कार्य करेगा, यह तो बहुत कठिन है। अब देखिए उत्तर हो गया, यह समझें कि आत्मा के अनंत आनंद के लिए राग ही इसका प्रेरणा है। याद आ रहा है ना, आपने सुना है ना वो, तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धे तस्माद् ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। मेरे पुत्रों आप ऐसी दिव्य तपस्या करो जिससे आपका हृदय सत्व शुद्ध हो जाए, जिससे आपको असीमित सुख मिले। तो भले ही इस समय हमको वो सुख नहीं मिल रहा है भक्ति का, लेकिन ये विश्वास है शास्त्र के आधार पर कि हम इस भक्ति की तपस्या को करेंगे, हरे कृष्ण मन जपेंगे, नियमों का पालन करेंगे, तो हमको बहुत अधिक सुख प्राप्त होगा। अब अगर हम भौतिक सुख में चिपके रहे तो क्या वो प्राप्त होगा, नहीं होगा, नहीं होगा ही नहीं वो, ये कोई ये डिस्करेज करने वाली बात नहीं है, होगा ही नहीं। मैं नहीं बोल रहा हूं, हरिदास ठाकुर जी बोल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, होगा ही नहीं। जो भौतिक भोग में पड़ा रहेगा उसको आध्यात्मिक सुख मिलेगा नहीं, जैसे कोई ईस्ट में जा रहा है तो वेस्ट में जा ही नहीं सकता। भाई यहां पे जो व्यक्ति बैठा है तो वो टीवी नहीं देख रहा है ना, आपको मैं टीवी भी देखूं और गीता भी सुनूं, ऐसे कैसे हो सकता है, हो सकता है अगर टीवी में गीता आ रही हो, लेकिन प्राय टीवी में नहीं आती गीता, इज़न्ट इट, बहुत सारे गीत आते लेकिन भगवद गीता नहीं आती। हाँ, तो खैर आप, मेरा ख्याल कहने का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति भगवत प्राप्ति करना चाहता है उसके लिए ये दो दिशाओं में नाव जा रही, ये सब बातें होती। तो आप समझ पा रहे हैं, आगे जाकर मुझे भगवान की प्रीति होगी, सुख मिलेगा, इसके संग आप इसके लिए इस आप स्वधर्म का पालन कीजिए। जैसे राज्य के प्रति लगाव उस मूर्ख के लिए प्रेरणा है जो खुद को एक पहाड़ से फेंक देता है, कहने का अर्थ है कि राज्य प्राप्ति करने के लिए व्यक्ति कुछ भी कार्य करेगा, उसी प्रकार से आगे आत्मोन्नति के लिए व्यक्ति कार्य करता है। तात्पर्य पढ़िए, खानपुर से आए हुए अनुपम कृष्ण।
अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए क्योंकि यह उनकी इच्छा है।
स्पष्ट है, समझाना नहीं है, पढ़ते जाइए।
कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय को कोई महत्व नहीं दिया जाता।
एक बहुत सूक्ष्म बात है, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम इर्रिस्पॉन्सिबल हों, अनउत्तरदायी हों। जैसे हमारे एक भक्त अभी खिचड़ी बनाते हैं, प्रभु जी क्या दिक्कत है, सुख दुख हानि लाभ में सब सम रही है, अब आप खिचड़ी में चीनी डालिए कि नमक डालिए, सब बराबर रही है, ऐसा नहीं है। आप अपने प्रयास में पूरे दायित्व से लेते हैं, फल की चिंता नहीं करते, भौतिक फल की चिंता नहीं करते, लेकिन कृष्ण को सुख मिले, वैष्णव को सुख मिले, इसके प्रति व्यक्ति सजग रहता है, सजग रहता है। यस,
दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए।
यस, हम लोग खूब चर्चा कर चुके हैं, जैसे एक बैंक का कैशियर नोट गिनता है तो क्या वो सोचता है कि नोट उसके हैं, तो उसका मतलब फिर गिनने की जरूरत क्या है, ध्यान आचार कितना, 5000, आप 5000 बोल रहे ना, ठीक है जमा कर दिए, क्या वो ऐसे करता है? बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से करता है कि नोट उसके नहीं है, बहुत ध्यान पूर्वक गिनता है। हाँ ठीक है, पढ़िए।
अतः भौतिक कार्य का कोई बंधन फल महीन होता है।
महीन जो का मतलब क्या होता है, इसकी हिंदी समझ में नहीं आई ना, महीन महीन मतलब सूक्ष्म होता है, लेकिन वाकई कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन फल नहीं होता है, महीन नहीं होता है, नहीं होता है। टाइप वो टाइपिंग एरर है, वो एक्चुअली इंटरनेट से मैं कॉपी पेस्ट करता हूं तो कभी कभी उसमें टाइपिंग एरर होती है, किताब में तो नहीं होगा सर। अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन नहीं होता है, नहीं का महीन हो गया, ठीक है। हाँ,
जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है वह सामान्य कर्म करने वाले के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता।
इस पे कुछ सूक्ष्म पॉइंट्स हैं। एक, सत्वगुणी व्यक्ति दान करता है, क्यों? मेरे ख्याल से उसको थोड़ा सा ऑफ कर दीजिए, कुछ आवाज आ रही है, ऑफ है, ओके, पता नहीं आपकी कैसी आवाज आ रही है। तो जो सत्वगुणी लोग होते हैं वह अच्छा बनने के लिए, लोगों पे उपकार करने के लिए कार्य करते हैं, और उसके बाद उनको उसको भोगने के लिए अगले जन्म लेने पड़ते हैं। रजोगुणी लोग तो आप जानते हैं, गलत सलत कार्य करते हैं भोग संबंधी, तो उनको भी भोगना पड़ता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति केवल कृष्ण के लिए कार्य करते हैं। ये भावना हमको कहते हैं एक बार बोलने से नहीं आएगा, आप हम लोग अभी विचार कर सकते हैं रात में सोते समय कि मैंने कितने कितने कार्य केवल कृष्ण के प्रसन्नता के लिए किए। अब और कठोर चीज है, कठोर मतलब गंभीर चीज है, कदम कानन महाराज बता रहे थे कि शरणागति इज अ सेकेंड टू सेकेंड प्रोसेस। शरणागति मतलब क्या, अनुकूल से संकल्पम प्रतिकूल से वर्जनम। तो अब अगले क्षण आप क्या सोच रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या वो हमारी भक्ति के लिए अनुकूल है, क्या उसके प्रतिकूल है। तो ऐसे करके अगर हम इतना सजग हो जाएं तो कितनी भक्ति में प्रगति हो जाएगी। तो एक एनालिसिस हमारी रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए कि कौन कौन से कार्य जो है वह मैंने कृष्ण को अप्रसन्न करने के लिए किए, कौन कौन से कार्य मैंने कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए। अच्छा है, इससे कोई डिस्करेज नहीं होगा, व्यक्ति रिपोर्ट कार्ड देखता ना तो देखा हाँ मैंने कुछ भक्तों से कुछ बोला या भक्तों से बर्ताव किया या जो भी सेवा करी इससे कृष्ण प्रसन्न हुए, मैं धाम में आया कृष्ण प्रसन्न हुए, जब किया इससे प्रसन्न हुए। तो वो क्रियाएं कम से कम क्रियाएं भगवान को समर्पित प्रसन्न करने वाली होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे युद्ध करेंगे तो भगवान प्रसन्न होते।
जो सफल बिजनेसमैन है वो रोज अपना डेबिट और क्रेडिट देखता है।
ये बहुत अच्छा उन्होंने एग्जांपल दिया, रोज वो बही खाता देखता है कि डेबिट कितना हुआ क्रेडिट कितना हुआ। तो क्रेडिट अच्छा हो और डेबिट कम हो यही बुद्धिमानी होनी चाहिए। ये बहुत अच्छा बात है, हम इस पूरे से सीख रहे हैं कि हर प्रैक्टिकली हर रात में हमें कम से कम एनालिसिस करना चाहिए कि कितना हम जो है चीजों को भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। और जितना ये भाव बढ़ता जाएगा उतना भगवान से प्रेम बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो वह ऋणी नहीं होता, उसको उसके लिए आना नहीं पड़ता। पढ़िए भागवत में,
भागवत में 11वें स्कंद में कहा गया है,
देवर्षि भूताप्त निर्णाम पितृणाम न किं करो नायम ऋणी चराजन सर्वात्मया सर्वात्म ना होना चाहिए, ठीक से इसमें मिस्टेक है, सर्वात्मनः शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम।
Yes. जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है।
होल्ड ऑन, समस्त कार्यों को त्यागने का मतलब चारपाई पे सोना नहीं है, समस्त वो कार्य जो कृष्ण को प्रसन्न नहीं करते उनको त्यागना। तब इसका मतलब, इसका मतलब क्या कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रह रहा है तो उसे वो कार्य त्याग देने चाहिए? नहीं, जो गृहस्थ आश्रम में है वह भी पत्नी और बच्चों को भक्त के रूप में देखे, और उसका यही उद्देश्य होना चाहिए कैसे इन्हें भक्ति में अधिक प्रोत्साहन दिया जाए। पत्नी कहे कि होटल में जाओ और टीवी दिखाओ तो वो नहीं करना चाहिए, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
ग्रहण कर ली है वह ना तो किसी का ऋणी है और ना किसी का कृतज्ञ, चाहे वे देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उसके पितर ही क्यों ना हो। इस श्लोक में कृष्ण ने
एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम माता पिता की सेवा नहीं कर सकते, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम समाज की सेवा नहीं कर सकते। पहले इसको मैं कंप्लीट करना चाहता हूं। इसका अर्थ ये नहीं कि आपका कोई परिजन है अगर वो उसको दुख है, कोई शरीर में कष्ट है, तो आप सेवा नहीं कर सकते। बस अपना एटीट्यूड चेंज कर दीजिए, और आप केवल एटीट्यूड चेंज कर देंगे उसका बहुत फर्क पड़ता है। मैं इसकी मदद कर रहा हूं, सेवा कर रहा हूं, क्योंकि यह भी कृष्ण का अंश है। अगर ये सोच के कर रहे हैं कि अरे नहीं मैं इसको कर रहा हूं मैं तो रूढ़ी हो जाऊंगा, ऐसा नहीं, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह भी कृष्ण का अंश, चाहे वो माता हो, चाहे पिता हो, चाहे कोई भी हो। अच्छा, कोई ब्रह्मचारी आश्रम में है, ब्रह्मचारी आश्रम होने का मतलब यह है कि आप माता पिता की सेवा नहीं कर सकते, लेकिन सर्वात्मनः या शरणम शरण्यम, भगवान श्री कृष्ण का भजन तगड़ी तरीके से कर रहे हैं तो ऋणी नहीं रहेंगे। कुछ अगर कर्तव्य नहीं कर पाए माता पिता के प्रति तो भगवान उसको करवा देते हैं, पूर्ण करवा देते हैं, समझ पा रहे हैं। लेकिन कोई जानबूझ करके, मान लीजिए कोई गृहस्थ आश्रम में है, उसके माता पिता दुखी हैं, और चाहे भक्त भी हो, कहे कि नहीं हम तो अब भगवान की सेवा कर रहे हैं और माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, तो ये गलत है, फिर ये बिल्कुल गलत है। देखिए पूरे शास्त्र में कहीं धोखेबाजी चलती नहीं, धोखेबाजी नहीं चल सकती। जानबूझ के कोई कार्य ना करना, इसका दंड प्राप्त होता है। तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखनी चाहिए। यस,
इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत किया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में और भी स्पष्ट से की जाएगी।
इसकी हम चर्चा फिर भगवान ने चाहा तो कल करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ये श्लोक अपने आप में एक बहुत बड़ा खुद की क्लास है, उसको